अनिवार्य ओपनिंग नरेशन
अनिवार्य ओपनिंग नरेशन
एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ग्रंथसार में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस किताब की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं वो है लैन समंथा चैंग का 2022 का काफी चर्चित उपन्यास द फैमिली चाओ।
हाँ बिल्कुल, और ये उपन्यास वाकई एक बहुत परतदार अनुभव देता है। मतलब पहली नज़र में आपको लगेगा कि एक चीनी अमेरिकी परिवार की कहानी है।
हाँ, एक पारिवारिक गाथा जैसी।
हाँ, लेकिन जैसे जैसे आप पन्ने पलटते हैं तो ये एक रहस्यमयी हत्या का मामला बन जाता है, फिर एक कोर्ट रूम ड्रामा, और यहाँ तक कि दोस्तोवेस्की के कालजयी उपन्यास द ब्रदर्स करमाजोव की एक बहुत ही अलग, बहुत ही आधुनिक व्याख्या भी नज़र आती है इसमें।
बिल्कुल, और लेखिका लैन समांथा चैंग वो खुद भी चीनी अप्रवासी माता पिता की संतान है, और एक दिलचस्प बात ये भी है कि वो आयोवा राइटर्स वर्कशॉप की पहली महिला और पहली एशियाई अमेरिकी निदेशक भी रहीं।
अच्छा,
हाँ, तो उनके लेखन में ये चीज़ें जैसे सांस्कृतिक पहचान है, पारिवारिक रिश्तों की उलझने हैं, अमेरिका में बसने का जो अनुभव है, ये सब अक्सर मतलब उभर कर सामने आते हैं।
सही बात है।
तो आज की हमारी ये चर्चा इसी उपन्यास के इर्द गिर्द रहेगी। हम कोशिश करेंगे कि कहानी के धागों को सुलझाएं, किरदारों के अंदरूनी सफर को समझें, और ये भी देखें कि कैसे चैंग ने विस्कॉन्सिन के एक छोटे से काल्पनिक शहर हेवन में बसे इस चाओ परिवार के जरिए कितने बड़े और जटिल सवालों को छुआ है।
बिल्कुल, तो कहानी की शुरुआत होती है इसी शहर हेवन में फाइन चाओ रेस्टोरेंट से। और ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं है, ये चाओ परिवार की पहचान है, उनकी कमाई का जरिया है, और शायद कहीं ना कहीं उनकी कैद का पिंजरा भी।
हम दिलचस्प बात कही आपने, कैद का पिंजरा।
हाँ, और इस परिवार के मुखिया हैं लियो चाओ। अब बाहर से देखने पर तो वो एक कामयाब हसमुख रेस्टोरेंट मालिक लगते हैं।
जैसे उनके हाथ में कोई जादू हो खाना बनाने का।
हाँ हाँ
हाँ, सार्वजनिक छवि बहुत अच्छी है।
बिल्कुल, लेकिन घर की चारदीवारी के अंदर वो एक निहायत ही अत्याचारी, मतलबी और मतलब भावनाओं से खेलने वाले पिता और पति हैं।
हाँ, लियो चाओ का किरदार वो अमेरिकी सपने के उस स्याह पहलू को दिखाता है ना, जहां सफलता की कीमत आप अपने परिवार से, अपने रिश्तों से चुकाते हैं।
सही कहा, वो बाहर की दुनिया के लिए एक मुखौटा ओढ़े रखते हैं, लेकिन असलियत में उनकी जिंदगी सिर्फ अपनी मर्जी, अपनी जरूरतों के आसपास ही घूमती है।
और इसी किरदार के इर्द गिर्द पूरा उपन्यास घूमता है, खासकर तब जब क्रिसमस पर उनके तीनों बेटे घर लौटते हैं।
हाँ, और वो वापसी कोई आम पारिवारिक मिलन नहीं है। डागो, मिंग और जेम्स तीनों बेटे सालों बाद एक छत के नीचे जमा होते हैं और हवा में जैसे एक अनकहा तनाव तैर रहा होता है।
बरसों का दबा हुआ गुस्सा।
हाँ, गुस्सा, अधूरी बातें, शिकायतों का बोझ, ऐसा लगता है ये घर वापसी असल में किसी विस्फोटक स्थिति की तैयारी है।
तो चलिए इन भाइयों से जरा मिलते हैं। कहा जाता है कि इनमें दोस्तोयेव्स्की के करमाजोव भाइयों की परछाई दिखती है।
हाँ बिल्कुल दिखती है। सबसे पहले डागू, बड़ा बेटा, 35 साल का है, थोड़ा या कहें काफी गुस्सैल, जुनून से भरा हुआ, दिमित्री करमाजोव जैसा।
अच्छा,
वो अपने पिता के रेस्टोरेंट के काम में जैसे फंसा हुआ महसूस करता है, कर्ज में भी डूबा है, और पिता के सालों के दुर्व्यवहार ने उसे अंदर तक कह सकते कि कड़वा बना दिया है। उसका गुस्सा अक्सर बेकाबू हो जाता है,
और यही गुस्सा शायद बाद में
मुश्किल खड़ी करता है।
हाँ बिल्कुल।
फिर है मंझला बेटा मिंग, वो बौद्धिक भाई है इवान करमाजोव जैसा, न्यूयॉर्क में कामयाब वकील है। उसने पूरी कोशिश की है कि वो अपने परिवार से, अपनी जड़ों से, अपनी चीनी अमेरिकी पहचान से दूर भाग सके। वो बहुत तार्किक है, थोड़ा अलग थलग सा रहता है, अपनी भावनाओं को जैसे छिपा कर रखता है।
वसीम का किरदार उस कश्मकुश को दिखाता है जो शायद कई अप्रवासी परिवारों की दूसरी पीढ़ी महसूस करती है ना? मतलब अपनी विरासत और अमेरिकी समाज में पूरी तरह घुलमिल जाने की चाहत के बीच का वो तनाव।
सही बात है। क्या वो सिर्फ परिवार से भाग रहा है या उस मॉडल माइनॉरिटी वाले दबाव से भी, ये सवाल उठता है।
हाँ, ये उपन्यास में बार बार आता है। और तीसरा, सबसे छोटा बेटा।
तीसरा है जेम्स, सबसे छोटा, कॉलेज का छात्र है, थोड़ा आदर्शवादी, दयालु, कुछ कुछ अल्योशा करमाजोव जैसा।
अच्छा, आध्यात्मिक दिल वाला।
हाँ कह सकते हैं, वो परिवार के इस उलझे हुए, बिखरे हुए ताने बाने में अच्छाई, सच्चाई और शायद थोड़ी हाँ आध्यात्मिकता की तलाश कर रहा है। उसकी कोशिश है कि वो इस घर में किसी तरह का नैतिक संतुलन बनाए रखे।
लेकिन लगता है कहानी आगे बढ़ने पर उसकी ये मासूमियत भी दाव पर लग जाती होगी।
बिल्कुल, और इस परिवार की धुरी, या कहें कि वो शांत केंद्र जहां ये सारे तूफान टकराते हैं, वो है विनी चाओ, लियो की पत्नी और इन तीनों बेटों की माँ।
दशकों तक अत्याचार सहने वाली पत्नी।
उपन्यास की शुरुआत में वो एक शांत धार्मिक महिला नजर आती हैं, लेकिन कहानी के पर्ते जैसे जैसे खुलती हैं, पता चलता है कि उनकी इस शांति के पीछे एक गहरी ताकत और कई अनकहे रहस्य छिपे हैं।
तो उनका सफर भी एक तरह के मूक विद्रोह से आत्ममुक्ति की ओर जाता है।
हाँ बिल्कुल, उनका किरदार बहुत दिलचस्प तरीके से विकसित होता है।
तो कहानी में मोड़ कब आता है?
असली मोड़ आता है क्रिसमस की शाम के खाने पर। माहौल पहले से ही तनाव भरा है, तभी लियो चाओ एक घोषणा करते हैं कि वो अपने तीनों बेटों को अपनी वसीयत से बेदखल कर रहे हैं और रेस्टोरेंट एक युवा वेटरेस के नाम करने वाले हैं जिससे वो सगाई करने का इरादा रखते हैं।
ये तो डागू के लिए जरूर बर्दाश्त से बाहर हो गया होगा।
बिल्कुल, पिता और बेटे के बीच सबके सामने एक भयानक झगड़ा होता है। डागू गुस्से में चीखता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा, और ये धमकी कई लोग सुनते हैं।
सार्वजनिक धमकी, ये तो बहुत गंभीर बात हो गई।
माहौल इतना बिगड़ जाता है कि बस, और अगली सुबह क्रिसमस के दिन एक भयावह खोज होती है।
क्या?
लियो चाओ का शव रेस्टोरेंट के बड़े वॉक इन फ्रीजर में मिलता है, जमा हुआ बर्फ की तरह सख्त।
फ्रीजर में? हे भगवान, जैसे सालों की वो भावनात्मक ठंडक अब शारीरिक रूप ले चुकी हो।
हाँ कुछ ऐसा ही, और यहीं से कहानी एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन और फिर कोर्टरूम ड्रामा में बदल जाती है।
और जाहिर है शक की सुई सीधे डागो पर जाती होगी।
बिल्कुल, उसकी सार्वजनिक धमकी, पैसों की तंगी, उसका वो गुस्सैल स्वभाव, सारे सबूत जैसे उसी के खिलाफ लगते हैं। गवाह भी उसके गुस्से की पुष्टि करते हैं, और जल्द ही डागो को अपने पिता की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है।
इस गिरफ्तारी से तो परिवार पूरी तरह बिखर गया होगा।
हाँ बिल्कुल, वीनी जैसे सदमे से पत्थर बन जाती है। मिंग, जो हमेशा परिवार से दूर भागना चाहता था, अब अनिच्छा से अपने भाई को बचाने के लिए कानूनी लड़ाई में उतरता है।
और जेम्स, वो आदर्शवादी बेटा?
जेम्स, उसे यकीन नहीं होता कि उसका भाई कातिल हो सकता है। वो सच्चाई की तलाश में अपनी खुद की तहकीक शुरू करता है, और उसकी ये खोज उसे अपनी माँ के अतीत के कुछ धुंधले कोनों तक ले जाती है।
अच्छा, माँ के अतीत से भी कुछ तार जुड़ते हैं?
हाँ, कहानी में कई रहस्य हैं जो धीरे धीरे खुलते हैं।
तो उपन्यास का आखिरी हिस्सा फिर मुकदमे पे केंद्रित है?
हाँ, डगुआ का मुकदमा, और ये सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं रह जाता, बल्कि एक सार्वजनिक तमाशा बन जाता है। यहाँ चैंग बहुत बारीकी से दिखाती हैं कि कैसे कानूनी व्यवस्था सच्चाई तक पहुँचने की कोशिश नहीं करती, बल्कि सबूतों के आधार पर एक विश्वसनीय कहानी गढ़ती है।
एक नैरेटिव बनाती है।
हाँ, अभियोजन पक्ष डागों की एक सीधी साधी तस्वीर पेश करता है, एक नकारा, लालची, हिंसक बेटा। और ये कहानी कहीं ना कहीं समुदाय में मौजूद एशियाई लोगों के प्रति जो पूर्वाग्रह हैं,
हाँ, स्टीरियोटाइप्स,
हाँ, उनको भी हवा देती है।
ये न्याय बनाम सत्य का जो मुद्दा है वो यहाँ बहुत साफ उभरता है। फिर
बिल्कुल, उपन्यास में एक पंक्ति है जो इस विचार को बहुत अच्छे से पकड़ती है, कुछ इस तरह की, सच्चाई वो कहानी नहीं थी जो जीती, बल्कि वो जो सबसे ज्यादा भरोसे के काबिल लगी।
वाह, ये तो कानूनी प्रक्रिया की सीमाओं पर एक गहरी टिप्पणी है, खासकर जब मामला इतना भावनात्मक और सांस्कृतिक रूप से जटिल हो।
सही कहा, और दिलचस्प बात यह है कि उपन्यास का असली चरमोत्कर्ष और रहस्य का खुलना वो किसी वकील की जिरा या जज के फैसले से नहीं होता।
तो फिर कैसे?
वो जेम्स की अपनी खोज और माँ विनी के साथ उसकी जो दर्द भरी बातचीत होती है उससे सामने आता है। तब पता चलता है कि लियो की मौत किसी एक पल के गुस्से का नतीजा नहीं थी।
अच्छा,
हाँ, वो दशकों के सहे गए दर्द, दबाए गए राज और किए गए त्यागों का एक दुखद अंत थी, जिसमें परिवार का कोई और सदस्य भी शामिल है जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।
ओह, तो ये तो बहुत चौंकाने वाला खुलासा होता होगा।
हाँ बिल्कुल, तो मुकदमे का फैसला आता है, लेकिन वो असली समाधान नहीं है। असली समाधान तो शायद होता ही नहीं है।
भावनात्मक स्तर पर चीजें अनसुलझी रह जाती हैं।
हाँ, भाइयों को उस सच्चाई के बोझ के साथ जीना सीखना पड़ता है जो शायद कानूनी सच से ज्यादा भारी है। परिवार टूटता है, शायद हमेशा के लिए, लेकिन इस बिखराव में शायद पहली बार भाई एक दूसरे के प्रति ज्यादा ईमानदार हो पाते हैं अपने पिता की उस दमनकारी विरासत से मुक्त होकर।
ये कहानी वाकई अपने पीछे कई गहरे सवाल छोड़ जाती है। अगर हम कुछ मुख्य विषयों पर बात करें तो एक तो साफ है, अमेरिकी सपने का विचार और उसका खोखलापन।
हाँ बिल्कुल, लियो चाओ ने वो सपना हासिल किया लेकिन उसकी कीमत उसके परिवार ने चुकाई। उसका वो फाइन चाओ रेस्टोरेंट बाहर से सफलता का प्रतीक है पर अंदर से वो एक
सोने का पिंजरा बन गया है।
और दूसरा अहम मुद्दा पहचान का है। तीनों भाई अपनी चीनी अमेरिकी पहचान के साथ अलग अलग तरह से जूझते हैं। हाँ, मिंग उसे पूरी तरह मिटा देना चाहता है, डागू उसके बीच फंसा हुआ है और जेम्स शायद एक संतुलित रास्ता तलाश रहा है। उपन्यास दिखाता है कि कैसे अल्पसंख्यक समुदायों पर अक्सर एक प्रदर्शन का दबाव होता है।
हाँ, समाज की मुख्यधारा की अपेक्षाओं के अनुसार ढलने का, अपनी असलियत को छुपाने का।
बिल्कुल,
ये बात उस पंक्ति में भी झलकती है जहाँ शायद कुछ ऐसा कहा गया है कि अमेरिकी होने का मतलब था कि आप अपना परिवार चुन सकते हैं लेकिन चीनी होने का मतलब था कि परिवार आपको चुनता है।
हाँ, ये अमेरिकी व्यक्तिवाद और पारंपरिक चीनी पारिवारिक मूल्यों के बीच का जो तनाव है उसे बहुत खूबसूरती से दिखाता है।
और फिर परिवार का बंधन, नफरत, गुस्सा, दूरी, सब कुछ होने के बावजूद संकट उन्हें एक दूसरे के पास खींच लाता है।
हाँ, ये रिश्ते बोझिल हैं, जटिल हैं लेकिन अटूट भी हैं। शायद यही पारिवारिक रिश्तों की सच्चाई है।
लेखिका ने इन सब विषयों को बुनने के लिए कई साहित्यिक तकनीकों का भी इस्तेमाल किया होगा।
सर्वज्ञ दृष्टिकोण अपनाया है, थर्ड पर्सन ओमनिशंट पॉइंट ऑफ व्यू।
अच्छा,
जिससे हमें अलग अलग किरदारों के मन में झांकने का मौका मिलता है।
हाँ, हम बारी बारी से तीनों भाइयों डागू, मिंग और जेम्स के मन में झांक पाते हैं। उनके डर, उनकी असुरक्षाएं, उनकी कश्मकश सब महसूस कर पाते हैं। हमारी सहानुभूति किसी एक पात्र के साथ बनकर नहीं रहती बल्कि बदलती रहती है।
और वो दोस्तोयेव्स्की वाली बात, अंतरपाठ्यता या इंटरटेक्सुअलिटी।
हाँ, वो बहुत अनोखी तकनीक है। ये उपन्यास लगातार द ब्रदर्स करमाजोव से जैसे संवाद करता है। ये सिर्फ एक नकल नहीं है। चैंग ने करमाजोव भाइयों और उनके पिता के उस ढांचे को लेकर उसे 21वीं सदी के अमेरिकी अप्रवासी अनुभव के संदर्भ में पूरी तरह से नया रूप दिया है।
ये देखना दिलचस्प है कि पितृहत्या, विश्वास, तर्क, नैतिकता जैसे शाश्वत सवाल एक बिल्कुल अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में कैसे नए मायने ले लेते हैं।
बिल्कुल, ये तुलना उपन्यास को एक और गहराई देती है। साथ ही प्रतीकवाद का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल है। फाइन चाओ रेस्टोरेंट, जैसा हमने कहा, सफलता और कैद दोनों का प्रतीक है।
और भोजन, वो भी तो अहम होगा चीनी संस्कृति में।
हाँ, भोजन यहाँ जुड़ाव का भी प्रतीक है और भ्रष्टाचार का भी। लियो अपने स्वादिष्ट खाने से लोगों को मोहता है लेकिन उसकी वो अधिकता और विलासिता उसके नैतिक पतन को भी दर्शाती है।
और वो ठंड और बर्फ।
हाँ, वो विस्कॉन्सिन की जमा देने वाली ठंड और बर्फ, ये सिर्फ मौसम नहीं है, ये परिवार के अंदर की भावनात्मक दूरी और लियो चाओ के ठंडे पड़ चुके दिल का भी प्रतीक है। उसकी मौत का फ्रीजर में पाया जाना इसी प्रतीकवाद को जैसे चरम पर ले जाता है।
उपन्यास पढ़ते हुए पाठक जरूर कई भावनाओं से गुजरता होगा। रहस्य का रोमांच, किरदारों के लिए गहरी सहानुभूति और शायद एक उदासी का भाव भी।
हाँ बिल्कुल, कहानी आपको आसान जवाब नहीं देती, किसी को पूरी तरह नायक या खलनायक बनाकर पेश नहीं करती। आप डागुसू के गुस्से के पीछे की वजह समझने की कोशिश करते हैं, मिंग की कश्मकश महसूस करते हैं और जेम्स की मासूमियत के खोने पर अफसोस करते हैं।
मेरे ख्याल से इसका स्थायी प्रभाव यही है कि ये आपको न्याय, वफादारी, परिवार और पहचान के मतलब पर सोचने को मजबूर करता है।
हाँ, और ये एशियाई अमेरिकी अनुभव का एक बहुत ही ईमानदार और शक्तिशाली चित्रण है। वो संघर्ष जो पारिवारिक जिम्मेदारियों, व्यक्तिगत सपनों और समाज के पूर्वाग्रहों के बीच संतुलन बनाने में आता है। ये दिखाता है कि कैसे क्लासिक कहानियों को जब नई सांस्कृतिक नज़रों से देखा जाता है तो वो और भी ज्यादा प्रासंगिक और जरूरी हो उठती हैं।
वाकई ये उपन्यास एक आईना है जो दिखाता है कि परिवार कितने उलझे हुए धागों से बुना होता है, जिसमें प्यार भी है, नफरत भी, त्याग भी है और एक अनकहा बोझ भी।
और साथ ही ये अमेरिकी सपने की चमक के पीछे छिपी कीमत को भी उजागर करता है, खासकर उन समुदायों के लिए जिन्हें अपनी पहचान और अपने हक के लिए लगातार जद्दोजहद करनी पड़ती है। क्या बाहरी सफलता ही सब कुछ है या उसकी कोई मानवीय कीमत भी होती है? ये सवाल कहानी के अंत में हमारे साथ रह जाता है। अनिवार्य क्लोजिंग लाइन, अनिवार्य क्लोजिंग लाइन। यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।